प्रिय भक्तजन, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज 20 जुलाई 2020 का दिन आपके लिए कल्याण में हो। आप सब श्री महाराज जी के प्रसंग सुनते हैं, आपको उसमें से कुछ उपदेश मिलते हैं, कुछ अच्छा अच्छा सुनने को लगता है। तो आज मैं एक नया प्रसंग, एक नए अंतरंग भक्त के हाथों द्वारा लिखा हुआ आपको सुनाने जा रही हूँ। इन भक्त का नाम है श्री कृष्णलाल संत। तो ये दिखते हैं कि मैं कृष्णलाल संत श्री माँ देवी तीर्थ के मैगजीन के विषय में आप सबको जो 50वीं मैगजीन का अंक हमारे सामने आया है उस पर बधाई देता हूँ। मैं लिखते हैं, मेरा जन्म सन 1934 में एक सुप्रतिष्ठित वैष्णव सूद परिवार में अखाड़ा बाजार में हुआ था। मैट्रिक कुल्लू हाई स्कूल ढालपुर में प्रथम दर्जे में पास करके मैं बीए करने के लिए धर्मशाला गया। बीए पास करके मैं बीटी करने के लिए मोगा गया। उन दिनों कुल्लू में कॉलेज नहीं था। वहाँ एक वर्ष रहने में मेरे जीवन पर स्वामी दयानंद सरस्वती तथा आर्य समाज का काफी प्रभाव हुआ था और मैं उसी समय से समाज सेवा को अधिक महत्व देने लगा था। घर में माता पिताजी सनातन धर्मावलंबी थे। घर में मंदिर था, प्रतिदिन प्रातः साय पूजा पाठ आरती होती थी। रामायण भागवत श्रीमद् भगवत गीता का पाठ भी होता था। हम सब बहन भाई भी सुनते थे। मेरे पिताजी रेवेन्यू में सरकारी नौकरी में थे। झूठ ना बोलना तथा रिश्वत ना लेना, किसी प्रकार का नशा ना करना, ये मेरे पिताश्री की प्रतिज्ञाएं थी। इसलिए बचपन से ही मुझे अपना घर मंदिर सा लगता था तथा पिताजी की समाज सेवा में तथा माताजी की घर गृहस्थी के सब कार्यों को करते हुए सामाजिक कार्यों में भाग लेना मेरे लिए एक आदर्श था। जब मैं 1954 में पढ़ लिखकर कुल्लू आया तो गीता बहन सीमा जी हिंदी मिडिल पास करके घर पर ही थी। कुल्लू में उन दिनों लड़कियों के लिए एक ही हिंदी मिडिल वर्नाकुलर स्कूल था, जहाँ से लड़कियाँ मिडिल पास करती थी फिर उनकी शादी कर दी जाती थी। को एजुकेशन में लड़कियों को पढ़ाना सनातनी धर्मावलंबी ठीक नहीं समझते थे। हाँ, आर्य समाजी लोग अपनी बेटियों को एजुकेशन में भी पढ़ाते थे। मैंने देखा गीता बहन एक कॉपी में ABC लिखती रहती थी। मेरी प्रथम सर्विस एज ए हेडमास्टर भुंतर स्कूल में शुरू हुई। पिताश्री ने कहा, गीता को भी पढ़ने का बहुत शौक है, इसे अपने साथ भुंतर ले जाओ। मैंने आज्ञा का पालन किया और गीता बहन को लेकर भुंतर चला गया। वहाँ पर गांव में दूसरी मंजिल में दो कमरों वाला मकान किराए पर लिया था। एक बेडरूम था, दूसरा किचन था। प्रातः स्कूल का पीएन आता, घर की सफाई कर जाता, वो संगम से जल का घड़ा भरकर रख जाता था। मैंने देखा स्कूल में को एजुकेशन ही थी, पर गीता बहन को छवीं क्लास कैसे मैं कैसे दाखिल करूं? सब छोटे छोटे बालक बालिकाएं ही थे, इसलिए मैंने उन्हें प्रातः समय घर पर ही इंग्लिश पढ़ानी शुरू की। गीता बहन प्रातः समय भोजन में आती, अन्य सहायता करा करती और मेरे दिए हुए लेसन को खूब दिल लगाकर याद करती थी। मैंने उन्हें एक वर्ष के भीतर ही 6वीं, 7वीं, 8वीं की इंग्लिश पढ़ाकर कुल्लू हाई स्कूल में परीक्षा दिलाकर 9वीं श्रेणी में दाखिल करवा दिया। 9वीं 10वीं की परीक्षा अच्छे अंकों में पास करके मैं मेरे अग्रज बिहारी लाल सूद जी के साथ चंडीगढ़ चली गई। बिहारी लाल सूद जी चंडीगढ़ में सचिन वाले में एक अच्छी पोस्ट पर थे। गीता बहन ने चंडीगढ़ में गवर्नमेंट कॉलेज से BA/BEd तथा अच्छी शिक्षा प्राप्त की और आते ही गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कुल्लू में अध्यापिका के पद पर नियुक्त हुई। इन्हीं दिनों 1964 में बाबा वैष्णो देवी के महान योगी का कुल्लू में पर्दापन हुआ और बाबा जी ने कुल्लू के निर्जन स्थान जोखोनाला में मंदिर निर्माण कार्य में भी शुरू किया था। बाबा की अद्भुत अलौकिक शक्ति से प्रभावित होकर समस्त कुल्लू निवासी अपना अपना सहयोग देते थे। मेरे पिताजी का स्वर्गवास अगस्त 1903 में हो गया था। तत्पश्चात पिता बहन ने शादी के लिए साफ इनकार कर दिया था। अपने पढ़ाई तथा पढ़ाने में ही लत चित थी। माता पिता के आध्यात्मिक संस्कार उच्च शिक्षा का होना इन्हें भगवत प्राप्ति की ओर मोड़ दिया। एक अच्छी अध्यापिका भी थी, सभी छात्रों की प्रिय थी। भाग्य की बात कहें या भगवान की कृपा कि हमारे घर में कभी कभी बाबा वैष्णो देवी आते थे। माताजी उन्हें भगवान का दर्जा देती थी, तो मैं माताजी की प्रेम भरी भक्ति देखकर सोचता कि माताजी कितनी भक्ति में मिला है। और मैं जब भी वैष्णो देवी जाती तो शाल या दही आदि ले जाती ताकि बाबा जी को सर्दी ना लगे। इधर मैं समाज सेवा में रुचि लेता था। मैं रेड क्रॉस में प्रधान था, प्रेसिडेंट था और उधर अंध विद्यालय का सेक्रेटरी भी। अपनी आय से कुछ भाग समाज की सेवा के लिए देता था। पूजा आदि करना मेरे बस का नहीं था। मुझे कुलीनों की सेवा में अधिक आनंद प्राप्त होता था। मैं हैरान रह गया था जब 1974 दिसंबर में गीता बहन वैष्णो देवी जम्मू से सीधे घर नहीं आकर वैष्णो देवी ही चली गई थी। उन दिनों में प्रिंसिपल कुल्लू में ही था। मुझे दुख भी हुआ और रोष भी। जाकर बहन को समझाने का प्रयत्न किया तो उत्तर मिला, भाई जी मुझे तो प्रभु के दर्शन करने हैं, इसलिए मैं अध्यात्म विद्या में ही विश्वास करती हूँ। आखिर बहन गीता एक तपस्वी के रूप में मंदिर में रहकर सेवा कार्य करती थी। मैं भी कभी कभी मंदिर जाता। श्री श्री महाराज जी ने मंदिर के कार्य के लिए शारदा माँ सेवा संघ की स्थापना की थी। वहाँ की एग्जीक्यूटिव कमेटी में मेरा नाम भी था। महीने में एक बार मीटिंग होती थी। गीता बहन प्रेसिडेंट थी। मंदिर कार्य प्रतिदिन प्रगति कर रहा था। बाबा जी ने अन्न क्षेत्र शुरू किया तो हम सब ने कुल्लू निवासियों ने अन्नदान शुरू किया। गीता बहन ने बाल गोपाल आध्यात्मिक स्कूल भी चलाया था, तो बच्चों के लिए मैंने बाल शिक्षा उपयोगी पुस्तकें मंगा दी थी। उन बच्चों को मैं इंग्लिश पढ़ाने जाता था जो 8वीं इंग्लिश में फेल हो जाते थे। बाबा जी मेरे इस कार्य को देखकर बड़े प्रसन्न होते थे। बाबा जी ने फिर डिस्पेंसरी खोली तो सब ने दवाइयों के लिए चंदा दिया। मुझे अनुभव हुआ कि बाबा जी बहुत बड़े कर्मयोगी है। कर्मयोगी वह होता है जो निष्काम सेवा करता है। भूखे को अन्न देना, नंगे को वस्त्र देना तथा प्यासे को पानी पिलाना बिना किसी नाम यश के, वही निष्काम सेवा या भगवान की पूजा है। और अब मैं सोशल सर्विस को पूजा ही समझने लगा। 1982 को प्रथम जनवरी को मैंने अपने दो बेटों राजन व अनिल के लिए अपने पैतृक गृह की दुकानों में ही प्रेस का उद्घाटन किया था। प्रथम दिन जाकर मैंने श्री श्री महाराज जी के श्री चरणों में करबद्ध प्रार्थना की थी कि वे स्वयं अपने कर कमलों द्वारा प्रेस का उद्घाटन करेंगे। और मैंने कहा था, महाराज जी कल प्रथम जनवरी प्रातः 10 बजे प्रेस का उद्घाटन है, हम गाड़ी द्वारा आपको यहाँ से ले जाएंगे। उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। मैं बहुत प्रसन्न था कि मेरे प्रेस का उद्घाटन एक कर्मयोगी बाबा द्वारा होगा। 1 जनवरी को प्रातः 6 बजे ही श्री श्री महाराज जी, दही गीता जी और नरेंद्र भाई को लेकर आ पहुँचे। हम सब ने निश्चा छोड़ा और श्री महाराज जी का दिल से स्वागत किया। मेरी माता देवी ने उन्हें गर्म कमरे में बैठाया, गर्म जल की बोतल दी। उद्घाटन की सब तैयारी हो गई थी। मेरे दोनों अनुज रामलाल तथा विजय, उनके परिवार, मेरी बहनें बहनोई तथा बाजार के सभी प्रतिष्ठित लोग उद्घाटन के लिए पहुँच गए। मेरे अनुज बाबा जी को लेने घर गए तो वह भी तो देखा कि बाबा जी समाधि में ही है, उनको भाव समाधि लगी हुई थी। बार बार विनती करने पर उन्होंने कहा, रामलाल बाबा की माँ से उद्घाटन करवा लो। एक ही बात है, गीता बहन जी ने आकर उद्घाटन किया, स्विच ऑन किया। उसी समय भालू बाबा के प्रिय भालू जो कि मंदिर से साथ ही आ गया था, खाली कुर्सी पर बैठ गया। सभी लोग देख के हैरान हो गए, उद्घाटन हो गया, लड्डू बांटे गए, पर बाबा जी अपनी भाव समाधि में ही थे। बाबा जी के प्रति मेरी निष्ठा और भी बढ़ती गई। मैंने सोचा बाबा कितने महान है, उन्होंने जनता के सम्मुख ये आदर्श प्रस्तुत कर दिया कि तुम्हारी भी अथवा बाबा की माँ गीता एक देवी है, उसकी सेवा करना तथा उसको उतना ही मान देना जितना बाबा को देते हो तुम्हारा एक कर्तव्य है, ये तुम्हारा एक धन भी है। बाबा द्वारा चलाए गए सेवा कार्यों में कुल्लू की पूरी जनता सहयोग देती थी। 1987 अप्रैल के महीने हम सब भाइयों ने घर के साथ ही नया मकान बनाने का निश्चय किया, तो नींव रखने के लिए बाबा जी को ही बुलाया था। बाबा जी गीता बहन जी को लेकर घर आए, नींव रख दी गई। फिर बाबा जी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर मेरे कमरे में आ गए और मैंने उनको भोजन खिलाया तो उन्होंने कहा, कृष्ण लाल आपका मन बहुत शुद्ध है। और इसी के साथ एक और प्रसंग है, जुलाई 1987 को मेरे बड़े बेटे अनिल की शादी थी। मैंने जाकर श्याम बाबा जी के लिए, बहन जी के लिए बस्तर आदि लेकर, विवेक और कुमार के लिए, सब के लिए बस्तर लेकर मैं और मेरे धर्म पत्नी उर्मिला सूद मंदिर पहुंचे और न्योता दिया तो बाबा जी ने कहा कि माता जी आ जाएंगी, बाबा की माँ आ जाएंगी, मम्मी जी आ जाएंगे, तो वो भी 2 घंटे के लिए। अच्छा, फिर शादी के दिन जिस दिन बारात जाने थी, गीता भाई 2 घंटे के लिए घर पे आई। और फिर जब बारात जाने लगी तो मेरी माता जी ने कहा कि कृष्णलाल बारात को अनिल को पहले मंदिर ले जाओ, क्योंकि बारात तो जोगिंदर नगर जानी थी। तो मैं शादीलाल जी का को बुलाया और कहा कि आप अनिल को और बहन जी गीता को मंदिर ले जाओ। तो वो मंदिर, उनको मंदिर ले गए और वहाँ जाकर देखा तो महाराज जी वहाँ सामने सीढ़ियों पर बैठे थे, फोटोग्राफर ने वीडियो बनाई। तो अनिल की शादी की वीडियो में स्वामी जी लाइव हैं। और फिर उसके बाद मैं वहाँ आता जाता रहा, जैसे कि हमारे ड्यूटी थे, हम एग्जेक्टिव मेंबर थे। कई प्रकार के झगड़े होते, अच्छाई होती, बुराई होती, कभी जन्माष्टमी होती, कभी और बड़े बड़े उत्सव होते, तो एग्जेक्टिव मेंबर को जाना आवश्यक होता था, इसलिए मैं भी प्रायः मंदिर जाया ही करता था। 1987 में उन्होंने जीवित समाधि लेने का निश्चय कर लिया और अंजल छोड़कर समाधि की तैयारी में बैठ गए। आखिर उन्होंने 13 दिसंबर को प्रातः अपनी नश्वर देह त्याग दी, परमात्म तत्व में मिल गए, वह पूर्ण थे और पूर्ण में मिल गए, ये मैंने सोचा और अपने मन को हौसला दिया और उनका वियोग भी सहन किया। उनके द्वारा दिए गए आदर्श को कभी नहीं भुला सकता हूँ। उन्होंने समाज सेवा का आदर्श मुझे इस प्रकार दिया कि निष्काम सेवा ही पूजा है। मैं समाज सेवी तो है ही हूँ, लेकिन उसको अध्यात्म में कैसे बदला जाए ये मेरा मन कुछ डिसाइड नहीं कर पाता था। तो जब मैंने बाबा जी को देखा, उनकी समाज सेवा देखी और अध्यात्म का मेल देखा, तो मैं 16 ने समझ गया कि अध्यात्म ही सेवा की नींव है। बाबा जी ने कई बार मेरी माता जी को ये वचन दिया था कि अंतिम समय में बाबा माता जी को लेने आएगा। हम तो संसारी लोग संसार के प्रपंच में फंसे होने के कारण ये सब अलौकिक बातें नहीं समझ पाते हैं। पर ठीक 1995 में माता जी बीमार हुई, उस वक्त उनकी आयु 91 वर्ष थी, तो हम सब भाई चारों भाई माता जी के पास ही थे। 16 दिसंबर को 1995 को बाबा जी श्रीमती सरला ओगरा जी के साथ हमारे घर पहुंचे। मैंने देखा वही रूप, वही चाल, वही भाषा, वह घर के भीतर वैसे ही है जैसे वह पहले 1969, 1970, 1971, 1972 में हमारे घर आते थे। सीधे बैठक से होकर शयनगृह में गए जहां माता जी सोई थी। जाकर उनके सिर पर हाथ रखा, माथे पर विभूति लगाई, मुंह में भी विभूति दी और बड़े प्यार से कहा, माता जी अंतिम समय का कष्ट है, आगे देखना प्रभु लीला। क्या कर बाहर आ गए और रामलाल जी ने जो प्रसाद रखा था वो सबको बांटा और कहा, माता जी से दान पुण्य करवा दो, अंतिम समय आ गया है और फिर अब बाबा को मंदिर जाना है। मैंने अपने बेटे राजन को उन्हें बस स्टैंड तक पहुंचाने के लिए भेजा। मैं उन्हें गाड़ी द्वारा बस स्टैंड पर ले गया। बाबा को गाड़ी में बैठा आया और इधर उधर घूमने लगे। फिर जाकर देखा तो बाबा गाड़ी में थे ही नहीं, ना जाने कहाँ चले गए। गाड़ी चली गई, हम घर आ गए। इससे पूर्व भी मैंने महाराज जी के बारे में बहुत बड़ी बड़ी अलौकिक बातें सुनी थी। 1990 में गीता बहन ने श्री माँ ने कमेटी में प्रस्ताव रखा कि बाबा जी का मंदिर बनाना है और बाबा जी की मूर्ति को स्थापित करना है। उनके द्वारा रखा गया प्रस्ताव पास हो गया और कमेटी ने मेरी ड्यूटी लगाई कि मूर्ति बनाने पर जब मूर्ति बन जाएगी तो कृष्णलाल सूद अपनी गाड़ी द्वारा मूर्ति लाएंगे। मैंने ये पुण्य खाया स्वीकार किया और उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन दिनों मेरे पास मारुति गाड़ी थी और पिंकू नाम का लड़का ड्राइवर भी था, इसलिए मैंने इसे अपना अहोभाग्य समझा कि मुझे महाराज जी की सेवा करने का एक सुनहरी अवसर प्राप्त हो गया है। जयपुर में मूर्ति बनकर तैयार हो गई तो मैं गीता बहन श्री माँ भाई विवेक जी को लेकर कुल्लू से जयपुर गया था। रास्ते में एक घटना घटी, घटना ऐसी घटी जिसमें मुझे 16 में विश्वास हो गया कि हमारे बाबा जी समय पर हमारी सहायता के लिए भिन्न भिन्न रूप बनाकर आते हैं। हमारी गाड़ी 7:30 बजे पहाड़गंज दिल्ली पहुंची। यहाँ श्याम सूद परिवार ने हमारा स्वागत किया पर गीता बहन जी ने कहा, हम यहाँ रात नहीं ठहरेंगे, हमें तो ईस्ट ऑफ कैलाश जाना है। वहाँ मेरी बचपन की सहेली गणेश दुआ है, उनको मैंने वचन दिया है, इसलिए रात होने पर भी हम पहाड़गंज से ग्रेटर कैलाश की ओर, ईस्ट ऑफ कैलाश की ओर चल पड़े। श्याम सूद जी ने ड्राइवर को ईस्ट ऑफ कैलाश का रास्ता भली भांति समझा दिया था। धीरे धीरे रात्रि के अंधकार में कुछ नहीं दिखाई देने लगा, पता नहीं चल रहा था कहाँ जाएं, घबराहट हो रही थी। इतने में हमने सड़क की बाई ओर एक आदमी को खड़े देखा। मैंने कहा, पिंकू गाड़ी रोको। उसने गाड़ी रोकी। मैंने गाड़ी से उतरकर उस आदमी से ईस्ट ऑफ कैलाश का पता पूछा तो उसने कहा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मैंने उसे कहा, आ जाओ गाड़ी में बैठो। वह आदमी आया और मेरे साथ गाड़ी में बैठ गया और वह पिंकू को स्टाफ कैलाश का रास्ता बताने लगा। शीघ्र ही 10 मिनट में हम स्टाफ कैलाश पहुंच गए और वह आदमी भी गाड़ी से उतरकर चला गया। उसमें रात्रि के 10 बज चुके थे। रात्रि हम वहीं ठहरे। प्रातः नरेश जी की बेटी दीपा ने अपनी गाड़ी में बैठकर हमें जयपुर के मार्ग पर लाया। वो अब हमारी गाड़ी जयपुर की ओर चली। दिन के 11 बज चुके थे। हमारी गाड़ी के साथ साथ एक बहुत बड़ा टैंकर भी जा रहा था। इनको ड्राइवर कोशिश कर रहा था कि टैंकर से हमारी गाड़ी आगे निकल जाए, पर टैंकर भी रास्ता नहीं दे रहा था। अचानक हमारी गाड़ी का एक हमारी गाड़ी को एक झटका लगा और गाड़ी खिलौने की तरह घूम कर रास्ते के किनारे एक छोटे से पतले वृक्ष के साथ लग कर टकरा कर रुक गई। बड़ी हैरानी की बात थी कि इतनी तेजी से घूमी हुई गाड़ी बैक होकर के रास्ते के किनारे एक पतले से वृक्ष की आड़ में खड़ी हो गई। उसके आसपास उसमें जो लोग थे रास्ते के इधर उधर वो सब दौड़ कर आए कि अब ये गाड़ी पलट जाएगी और इसमें बैठे हुए लोगों को ना जाने क्या होगा। वे दौड़ कर आए, उन्होंने पूछा तो हमने कहा नहीं हम ठीक है। सचमुच मुझे भी एक बहुत बड़ा झटका तो लगा था लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ था। ड्राइवर ने भी गाड़ी की जाँच की, गाड़ी भी बिल्कुल ठीक थी। सभी लोग हैरान थे कि आप इस सड़क पर बच कैसे गए, यहाँ तो एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। मैंने उनको गाड़ी में श्री महाराज जी का चित्र दिखाया और कहा इनकी ही कृपा है। सायंकाल हम मूर्तिकार के घर पहुँचे। उन्होंने हमें अपने घर में ठहराया। जुलाई की गर्मी थी जिससे कि हमें गर्मी सहना बहुत कठिन हो रहा था। हमने वहाँ शेषी महाराज जी की मूर्ति के दर्शन किए तो दूसरे दिन मूर्ति को अच्छे से गाड़ी की डिक्की में रखा और भी कुछ सामान लिया था, इसलिए गाड़ी काफी भारी थी। पर धीरे धीरे हम सायंकाल दिल्ली पहुंचे। दूसरे दिन हम दिल्ली से मंदिर की ओर चले। सारा दिन चलते हुए रात भी चलते हुए प्रातः 4 बजे के लगभग हम कुल्लू शहर में पहुंचे। मैं गाड़ी लेकर मंदिर पहुंचा और मंदिर निवासी उठे और गाड़ी से श्री महाराज जी की मूर्ति निकालकर मंदिर में रख दी गई और मैं वापस घर आ गया। दूसरे दिन बहन जी ने श्रीमान गीता जी ने हम सबको बुलाया एग्जेक्टिव को कि आओ मूर्ति के दर्शन करो। श्री महाराज जी कृपा है कि हम इतना भार ये गाड़ी उठा करके ले आई थी। जब सब ने मूर्ति देखी तो सब बहुत खुश हुए और ड्राइवर ने उस वक्त कहा कि मैं तो बहुत ही परेशान जैसा दुखी जैसा हो रहा था कि न जाने कहां गाड़ी खड़ी हो जाएगी और क्या होगा, कहीं गाड़ी का पहिया पंचर न हो जाए, मुश्किल हो जाएगी। पर महाराज की कृपा से हम सुरक्षित मंदिर पहुंचे। उसी समय भालू आया और उसने आकर के महाराज जी को सूंघा, चाहता और प्यार किया। ये सब देखकर सभी सदस्य हैरान हो गए। तो एक सदस्य ने कहा देखो भालू को स्वामी जी के दर्शन हो गए। फिर मंदिर में महाराज जी की मूर्ति की भव्य प्रतिष्ठा भी हुई थी। उसमें भी मंदिर की कार्यकारिणी के सभी सदस्य एक साथ मंदिर में आते और कार्य करते और मुझे भी मंदिर के कार्य में बड़ा आनंद आता। कभी कभी हम कागज की झंडियां भी बनाते। बाल गोपाल आध्यात्मिक क्षेत्र के बच्चे भी ये झंडियां बनाते थे तो मैं भी उनके साथ एक बच्चे की तरह झंडियां बनाने में लग जाता था। फिर मुझे मौका मिला जब मंदिर में अध्यात्म सम्मेलन होने शुरू हुए तो मुझे भी भाषण देने के लिए बुलाया जाता था और मैं सोचता था मैं क्या भाषण दूं, मैं तो सामाजिक सेवा में ही रुचि लेता हूँ। मुझे अध्यात्म की बातों से तो कुछ परिचय भी नहीं है, कुछ लेना देना भी नहीं है और मुझे कोई ज्ञान भी नहीं है। और कई बार मैंने गीता बहन जी को कहा भी कि भाई मैं अध्यात्म सम्मेलन में आके क्या भाषण दूंगा। मैंने कहा जो आप भाषण देते हैं मोरालिटी पर, नैतिकता पर, सच्चाई पर, वही भाषण आपको वहाँ देना होगा। तो उन्होंने मतलब मैंने उनके ये वचन सुने गीता बहन जी के, और मैं भी कभी कभी वहाँ जाकर भाषण देने लगा, क्योंकि मुझे बाबा जी का निष्काम कर्मयोग था वो ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और फिर मैंने बाबा जी की कृपा से ही समझ लिया कि समाज सेवा की नींव अध्यात्म ही है, नैतिक हुए बिना समाज सेवा नहीं हो सकती है, ऐसी सेवा तो आडंबर बन जाती है। इसलिए समस्त सामाजिक कार्यों को करते हुए हमें अध्यात्म को ही अपनी नींव बनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मोहनलाल सूद रिटायर्ड प्रिंसिपल। प्रिय बहनों भाइयों, ये पिछला सूद जी द्वारा लिखा गया लेख है जो कि शांत वाणी में छपवाने के लिए उसे लिखवाया था, लेकिन ना जाने किस कारण ये लेख उस शांत वाणी में नहीं छपा। शायद मैंने वो ठाकुर के पास नहीं भेजा होगा, तो आज मुझे वो लेख मिला है। वही लेख पढ़कर मैंने आपको सुनाया है कि कैसे कैसे प्रसंग जी ने के जीवन में आए और हमारे जीवन में भी आए, और किस प्रकार भक्तों ने अपनी अपनी सेवाओं द्वारा शिव महाराज जी की कृपा को अनुभूत किया है। इन्हीं शब्दों के साथ गीता माँ जय माता दी।